तो ये राजा मुचुकुंद जो था उसने देव और असुर यानी राक्षस और देव इसके युद्ध में देवताओं का बहुत सहायता किया और कई हजारों वर्ष तक ये जो मुचुकुंद है उसने देवताओं की तरफ से युद्ध किया और इतना युद्ध किया कि आखिर में राक्षस लोग हार गए और देवता लोग विजयी हो गए। तो जब ही युद्ध समाप्त हो गया तो देवता लोग प्रसन्न हो गए, उन्होंने कहा मुचुकुंद राजा आप पर हम बहुत प्रसन्न हैं, अभी आप और मांगिए आपको क्या चाहिए, आपने हमारे लिए इतना सेवा किया है तो हम चाहते हैं कि आप उसको दे देंगे आपको कुछ आप मांगो। तो बेचारा मुचुकुंद राजा लड़ लड़ के इतना थक गया था कि उसने बोला मुझे सोना है बस, आपको कोई बढ़िया वरदान दो तो आप बोलेंगे हमको अच्छा घर बना दो, अच्छी गाड़ी दो, अच्छी बीवी दो, अच्छा पति दो, बहुत सारा उन्हें लंबा हमारा रहेगा। लेकिन वो स्थिति पर हम डिपेंड होता है, जिस स्थिति में आप रहेंगे उस स्थिति में रहेंगे। अगर मन शांत रहेगा, खाना पीना करके पेट भरा रहेगा, नींद करके फ्रेश रहेंगे तो बड़ी लिस्ट आएगी। लेकिन वो बेचारा इतना थक गया था कि उसने बोला मुझे सोना है बस, और ऐसे सोने की व्यवस्था करो मेरी कि मुझे कोई जगह नहीं चाहिए, और अगर कोई जगह दिया मुझे बाई मिस्टेक मैंने आँख खोला मतलब मैं जग गया और मैंने आँख खोल दिया तो मेरी नजर उस पर पड़ते ही वो जल कर भस्म होना चाहिए, मतलब कितना नींद आया होगा उसे पूछो आप, कितना डेस्परेट रहेगा उस सोने के लिए, हाउ डेस्परेट ही मस्ट बी टू स्लीप। भगवान ने देवताओं ने कहा तथास्तु आप सो सकते हैं। तो बेचारा जाके गुफा में सो गया। ये कभी की बात है, सत्ययुग की बात है, सत्ययुग 14 लाख कुछ सालों का होता है, 17,68,000 का होता है, कितना 17,68,000 का होता है। उसके बाद 8,64,000 का त्रेतायुग होता है जिसमें राम भगवान आते हैं, हाँ, और उसके बाद में ही मैं थोड़ा गलती कर रहा हूँ, anyway, बहुत लाखों साल होते हैं। उसके बाद द्वापर आता है, द्वापर के अंत में भगवान कृष्ण आते हैं। तो ये आदमी सोया कभी सत्ययुग में, और एक घटना कभी घट रही है द्वापर युग में, दो युग बीच में बीत चुके हैं, तो तीसरा युग समाप्त होने वाला है, मतलब ऑलमोस्ट 3 युग बीत चुके हैं, मतलब कम से कम 50 लाख साल में बीत गए होंगे, कम से कम नहीं 40 लाख साल बीत गए होंगे। तो ये जो आदमी है वो गुफा में सो रहा है और बहुत साल से सो रहा है ना, उसकी जो दाढ़ी जो है उसकी ऐसी कई मील तक लंबी है, ऐसी 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 बह रही है, उसके नाखून जो है वो बढ़कर कई मीटर लंबे हो गए हाथ से ऐसे ही पड़ा है, और लंबे लंबे नाखून उसके, लंबी दाढ़ी उसके, लंबे बाल उसके सब जगह फैले हुए, ऐसा विचित्र रूप है ना उसका, शरीर नहीं किया उसने, सो रहा है ना वो। नाखून भी कहीं काटे सो रहा है। तो जैसे ही भगवान ने अपना उत्तर का ऊपर का वस्त्र उस पर डाल दिया और अंदर जाके सो गए और छुप गए, तो उसके बाद भाग भाग के काले और राक्षस वहां पर आए, वो देखा कि व्यक्ति सो रहा है तो उसको लगा कि ये कृष्ण भगवान जो है ये भेष बदलकर यहां पर सोने का नाटक कर रहा है, क्योंकि तो उसका ही वस्त्र उसके ऊपर है, तो वस्त्र देखे मैं देखा भागते हुए वही वस्त्र भी उसके बॉडी पर रखा हुआ है, मतलब वही व्यक्ति सो रहा है, लेकिन मुझे उल्लू बनाने के लिए भेष बदलकर लंबी दाढ़ी बनाकर लंबे लंबे बाल बनाकर यहां पर लेट रहा है। तो बड़े गर्व के साथ, बड़े गुस्से के साथ एक वीर की तरह उसने आकर उसको लात मार दिया, ऐ उठो यहां से, गर्व कहेंगे युद्ध करो मुझसे, फिर लात मार दिया उसको, तो जग गया वो नींद से। जैसे नींद से जग गया आंख खोल के उसने देखा वो जलकर भस्म हो गया उधर के उधर, और जैसे जलकर भस्म हो गया भगवान अंदर से बाहर आ गए। कभी कभी ना शक्ति से अधिक बुद्धि ज्यादा पावरफुल होती है, उसने बोला अभी इसको परस्पर मारना अच्छा है ना, खुद की मेहनत करो मारने के लिए उसको, थोड़ा भाग ले थोड़ा कसरत भी कर लेंगे और भाग भाग के आगे चले जाएंगे और अपने आप मर जाएगा, ये मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, मैं देखूंगा आराम से। हाँ, जिस तरह से भगवान ने बुद्धि का इस्तेमाल करके बिल्कुल युद्ध युद्ध नहीं किया, उसको लगा ऐसा कि ये लड़कों है भाग रहा है ऐसा भी उसको अनुभूति दिया, उसका गर्व को बढ़ाया और उसके द्वारा लात मरवाया उसको, और उसके हाथ खुलते ही बिना किसी प्रयास के, बिना किसी मेहनत करते हुए उसको न केवल वध कर दिया बट वस्त्र करके राख भी कर दिया। फिर भगवान के सामने आए। इसके पीछे और भी कारण है, क्योंकि देवताओं का उसने हित किया था ना, देवताओं के लिए सहायता किया था, देवता लोग भगवान के भक्त हैं, तो भगवान के भक्तों के लिए, भक्तों के लिए उसने सहायता किया था। और बेचारा सोता पड़ा हुआ है, अगर उसको कोई जगाएगा नहीं तो वो सोता ही रहेगा ना, फिर सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग, कलयुग, फिर सत्ययुग, फिर त्रेतायुग, फिर कलयुग, कोई जगाएगा नहीं उसको, तो वो जगेगा कैसे? और जो कोई जगाने की हिम्मत करेगा वो जल्द भस्म हो जाएगा, तो जगाया कैसे जाए उसको? बोले जिसको मारना है उसको ही ट्रिक करके सामने लिया जाए, तो जगने का काम भी हो जाएगा उसका, और उसका जो उद्धार होना है वो भी हो जाएगा। अब मैं जगाऊंगा तो वो मुझे देखेगा, तो मुझे जलकर बस होना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने ट्रिक किया और उस राक्षस को सामने जाकर लेके उससे लार मरवाया और मर गया। और फिर भगवान ने उसका उद्धार करना चाहे, इसलिए भगवान के सामने चले गए, दर्शन दिया, तब उच्चकुंज उठ गया और इतना प्रसन्न हो गया भगवान को देख के। इसलिए कहा है, भगवान आप जिस रूप में मेरे सामने इतने प्रसन्न वदन मुख लेकर खड़े हैं, वैसे ही मेरे सामने खड़े रहो कि मुझे आपका आप वरदान दीजिए। भगवान कहते हैं कि मैं ये वरदान आपका अगले जन्म में पूरा करूं। तब उच्चकुंज राजा था, वो तो बहुत लंबा चौड़ा था, तो उससे प्रश्न किया, अरे जो राक्षस का मैंने वध किया वो इतना छोटा क्यों था? तो उसने कहा, भगवान ने कहा कि आप जब सोए थे ना तो सत्ययुग था, अभी सत्ययुग खत्म हो गया है, अभी त्रेता भी गया और द्वापर भी खत्म हो गया, और जैसे जैसे युग आगे बढ़ता है वैसे वैसे लोगों की हाइट जो है वो कम 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 हो जाती है। हम लोग बोलेंगे, अरे हमारे इस्कॉन में ना वो एक माता जी है, वो 6 फीट लंबी है, बहुत लंबी है, आपको पता नहीं है, तो भगवान रामचंद्र आए थे तो 25 फीट के थे, तो कृष्ण भगवान थे वो भी बहुत लंबे थे, और जब ही चैतन्य महाप्रभु आए कुछ 500 साल पहले वो कितने थे? 7 फुट 6 इंच थे। अब 500 साल पहले क्या होता और हाइट लोगों की कम थी। तो जब उच्चकुंज ने भगवान को प्रश्न किया कि ये इतने छोटे छोटे कैसे लोग हो गए, भगवान ने समझाया कि आपको सोने के बाद बहुत युग बीत चुके हैं, इसलिए उनकी हाइट अभी कम है। तो उच्चकुंज फिर उसका समझ, शरीर समाप्त हो गया, जीवन समाप्त हो गया, और अगले जन्म में उसने क्या जन्म लिया? मैंने कहा था कि आज मैं आपको पंडरपुर की कहानी बताऊंगा, तो उच्चकुंज बना कुंडली, तो कुंडली हम बोलते हैं ना, पंडरपुर में होते थे भगवान के बड़े, उसने कुंडली के रूप में जन्म लिया पंडरपुर में। पंडरपुर जो है इसके कई नाम है, इसके पंडर, पंडरीनाथ, फिर उसके कई नाम है, लोहदंड वन, सूर्य तीर्थ, पांडुरंगपुर, पुंडरीकपुर, पंडरपुर, पांडुरंगपल्ली, ऐसे बहुत उसके नाम है। एक नाम है दिंडीरव वन, तो ये दिंडीरव वन में इसका जन्म हुआ कुंडली में। तो ये नाम कैसे पड़ा पंडरपुर का दिंडीरव वन? एक भयंकर राक्षस था, उसका नाम था दिंडीरव, और उसने देवताओं का जीवन एकदम हराम कर दिया, अपनी शक्ति से और तप के बल से सब देवताओं का उसने जीवन हराम कर दिया, बहुत त्रस्त कर दिया था। तो सब देवता लोग बहुत दुखी हो गए, और वो दुखी होकर ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने बताया, ब्रह्मा जी हमने कुछ किए, ये राक्षस ने हमारा जीवन इतना बर्बाद करके रखा। तो ब्रह्मा जी उनको विष्णु के पास ले, और विष्णु ने कहा डोंट वरी, हमेशा भगवान क्या बोलते हैं, डोंट वरी बी हैप्पी, कुछ भी हो जाए तो भगवान बोलते हैं डोंट वरी बी हैप्पी, मैं हूं ना। और सच में है ये, कुछ भी कष्ट होगा ना आपको तो भगवान के पास जाना चाहिए, और कहीं शॉपिंग करने मत जाओ, ये मंदिर में, वो मंदिर में, ये कोने के मंदिर में, ये मेन मंदिर में, बड़े छोटे मंदिर में, कहीं जगह जाओ, जाना है तो एक ही जगह जाओ। हाँ, अकाम सर्व काम हुआ मोक्ष काम हुआ उधार दी, भगवान कहते हैं कि तुम्हारे मन में अगर बहुत सारी इच्छा है तो भी मेरे पास आओ, तुम्हारे पास कोई भी इच्छा नहीं है तो भी मेरे पास आओ, और तुम्हारे पास मोक्ष की इच्छा है तो भी मेरे पास आओ, मतलब हर समय केवल मेरे पास आओ
और कहीं भी मत जाओ, ऐसा क्यों बोलते हो? खुद को बड़ा करने के लिए, खुद का सम्मान बढ़ाने के लिए। हाँ
नहीं सर, ऐसा नहीं है। जैसे अगर पिताजी बोलेगा बालक को, बेटा कुछ तकलीफ हो ना मेरे पास आओ, मैं सब ठीक कर लूंगा, तो क्या पिताजी का गर्व का बोलना है क्या? वो पिताजी मेरे गर्व से बोल रहे हैं, बेटा मैं पावरफुल हूं सबसे, मेरे पास आया करो। नहीं, पिताजी प्रेम से बोलता है बच्चे को, तो कुछ कष्ट हो ना तुमको मेरे पास आना, मैं सब ठीक करूंगा, वो प्रेम का लक्षण है। तो वैसे भक्तों को भगवान बता रहे हैं कि तुम्हारे पास कुछ भी तकलीफ होगा ना तो मेरे पास आओ। तो भगवान ने कहा डोंट वरी, मैं आ रहा हूं। तो भगवान ने एक राजा के पुत्र के रूप में जन्म लिया। उसकी भी एक कहानी है, बहुत कहानी है, कहानी के अंदर कहानी, कहानी के अंदर कहानी। उस राजा का नाम था श्रीचंद्र। अभी आप खाली ऐसे बैठे रहोगे तो आपको कुछ याद नहीं आएगा मैंने क्या क्या बताया, तो लिखोगे तो याद आएगा। तो राजा श्रीचंद्र ने बहुत साल तपस्या किया। कितना उन्होंने तपस्या किया? स्वर्ग के 1000 साल तपस्या। स्वर्ग का एक दिन हमारे 6 महीने का होता है, ऐसे 6 महीने का एक दिन होता है, ऐसे 30 दिन का एक महीना बनता है, और ऐसे 360 दिन का एक साल बनता है। ऐसे 1000 साल तपस्या किया उसने, तब जाकर ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दिया, दर्शन दिया। मैंने बोला क्या चाहते हो, मांगो। सॉरी, शिव जी ने दर्शन दिया, भगवान शंकर ने। अब पूछा मैं प्रसन्न हूं आपसे, वरदान मांगो। तो राजा ने बताया कि मुझे आप जैसा या विष्णु जैसा पुत्र चाहिए, आप दोनों हो या कोई, या दोनों में से एक मेरे पुत्र बन जाओ। तो भगवान शंकर ने कहा विष्णु आपके पुत्र बनेंगे। तो वही विष्णु जो है राजा श्रीचंद्र के पुत्र बने, जिनका नाम रखा गया मल्लिकार्जुन। जो वादा किया था ना जिंडीराव राक्षस के त्रास से, संताप से मुक्त होने के लिए भगवान ने वरदान दिया था ना, मैं आऊंगा डोंट वरी, तो भगवान ने अवतार लिया मल्लिकार्जुन के रूप में। और ये मल्लिकार्जुन जो था वो छोटा था, बड़ा हो गया, 20 साल का जवान बन गया। और एक दिन 20 साल की उम्र में वो जंगल में शिकार खेलने गया, तो उस जंगल में उसकी जिंडीराव राक्षस से मुलाकात हुई, और देखते ही राक्षस ने उसको ललकारा और उनका भयंकर युद्ध हो गया। जमीन पर, आकाश में, पानी में, सब जगह पर इतना भयंकर युद्ध हो गया, हाहाकार मच गया उनके युद्ध से। और इतने लंबे समय तक युद्ध चला उनका। उसके बाद में लोहे की बहुत बड़ी पर्वत समान गदा लेकर मल्लिकार्जुन ने जिंडीराव राक्षस के सर पर प्रहार किया, और वह एकदम मरने जैसा हो गया एक प्रहार के अंदर, बहुत युद्ध करने के बाद। अभी जब उसके सर पर लोहदंड का प्रघात हो गया, मतलब आघात हो गया उसके पर, तो अचानक उसके मुंह से उसने हरी 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 कहा। जब रावण का वध हुआ, रावण को राम ने, भगवान ने बाण मारा छाती में, तो क्या बोला उसे? श्री राम श्री राम श्री राम करके जमीन पर गिर के मर गया। क्यों ऐसा बोला उसको? जीवन भर तो दुश्मनी किया राम से ना उसने, राम की पत्नी को छीना, राम को मारना चाहा, राम की पत्नी को उसको मारकर उसका भोग लेना चाहा, और जब मरने का समय आया तो श्री राम श्री राम। और जीवन के समय पर अगर किसी ने भी राम को श्री राम करके पुकारा तो श्रीमत कहो उसको, ना शत्रु के सामने श्रीमत लगाओ, उसका आदर मत दो, सम्मान मत दो। ऐसे बोलने वाला रावण खुद मरते समय श्री राम श्री राम श्री राम। क्या कारण है इसका बता? बट इज रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि रावण जय और विजय में से एक का अवतार था। रावण और कुंभकर्ण दोनों जय और विजय थे पहले, और वो विष्णु के वैकुंठ के दरबार में दरवाजे पर खड़े रहने वाले रक्षक थे, सैनिक थे, पहरेदार थे। उन्होंने सनत कुमार आदि 4 ऋषियों का अपराध किया, उनको वैकुंठ में जाने से रोक दिया उन्होंने। तो 4 ऋषियों ने उनको साफ दिया कि तुमको राक्षस बनकर पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, जाना पड़ेगा राक्षस आप मिलन। तो उनको राक्षसों ने राक्षस बनने का शाप दिया,
ये आवाज सुनकर विष्णु भगवान बाहर से भाग के आए, अंदर से क्या हुआ भाई, वैकुंठ के दरवाजे में क्या हो रहा है? होता है ना कभी कभी, साहब ऑफिस में बैठा हुआ है, बड़ा ऑफिस है, अपने गेट के सामने कुछ शोर हो गया, तो साहब उठ के आते ना, क्या हुआ, क्यों चोर शोर जा रहे हो? नहीं साहब, ये ऐसा ऐसा आया था, ये आदमी ने ऐसा ऐसा किया, उसको पकड़ा है हमने अभी। उस तरह से जब शोर शराबा हुआ बाहर वैकुंठ के दरवाजे पर, तो भगवान विष्णु बाहर आए और देखा कि मेरे भक्त जो हैं जय और विजय, उन्होंने मेरे दूसरे भक्त जो है सन्यासी ऋषि मुनि जो है उनको मेरे पास आने से रोक दिया है, क्योंकि वो चार ऋषि थे और वो चार ऋषि इतने पावरफुल थे कि अपनी तपस्या के बल से अपने शरीर को उन्होंने केवल 4 साल का बना के रखा था। वो बहुत ही हजारों साल बूढ़े थे वो उम्र से, लेकिन अपने शरीर के अंदर कोई सेक्स की इच्छा नहीं होनी चाहिए, इसलिए अपने शरीर को उन्होंने योग के बल से 4 साल का ही बना के रखा, क्योंकि 4 साल के शरीर के अंदर सेक्स की इच्छा नहीं होती, बालकपन का शरीर होता है। तो ये 4 साल के शरीर में जो 4 ऋषि थे उनको देखकर भगवान विष्णु ने माफी मांगी। भगवान को माफी होने जरूरत क्या थी? भगवान की भावना कैसे देखो, भगवान क्या सोचते हैं? भगवान सोचते हैं कि ये मेरे पैरेदार हैं और मेरे मेहमान मुझे मिलने आ रहे थे, मुझे मिलना उनका अधिकार था, लेकिन मेरे ही पैरेदार लोगों ने अपराध किया उनका, उनको रोक लिया, इसलिए भगवान ने अपने पैरेदारों की तरफ से मालिक होने के नाते उनसे माफी मांग लिया। तब तक वो ऋषि ने जय विजय को शाप दे चुके थे, तभी उन्होंने कहा माफी मांगने के बाद, कोई बात नहीं, आप राक्षस बनोगे लेकिन भगवान स्वयं आके तुम्हारा वध करेंगे और तुम्हारा उद्धार करेंगे, तुम बच जाओगे। 3 बार आना पड़ेगा उनको राक्षस बन के, तो पहली बार वो आए कौन बन के, हाँ, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। अरे आप लोगों को भक्ति विधान के स्टाफ लोगों के सब बायाट होना चाहिए, वो तो उठाओ, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप आ रहे हैं अभी, आपको ही बोल रहा हूं। दूसरी बार आए तो रावण और कुंभकर्ण बनकर आए, और तीसरी बार कौन आए करके बोलो, शिशुपाल और दत्त वगैरह बनकर आए, कृष्ण भगवान के समय में, राम भगवान के समय में कौन आए, रावण और कुंभकर्ण। तो भक्त थे भगवान के, शाप लगा से राक्षस बनकर आए और भगवान का द्वेष किया, भगवान का युद्ध किया, लेकिन जब अंतिम समय आया तो श्री राम श्री राम करके भगवान। वैसे ही दिंडिरव राक्षस ने जब मल्लिकार्जुन के हाथ से गदा का प्रवाह हो गया तो मुंह से बोला हरि 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 हरि, तब मल्लिकार्जुन ने जो भगवान का अवतार थे ना, विष्णु का अवतार थे, उसने उनको विष्णु का दर्शन दिया। अब तब मल्लिकार्जुन ने जब विष्णु का दर्शन दिया तो दिंडिरव राक्षस ने उनसे वरदान मांगा कि जहां पर मैं मर रहा हूं उसको दिंडिरव वन नाम से प्रसिद्ध होना चाहिए, मेरी ऐसी इच्छा है, और जहां मेरी मुझे मारकर गदा गिरी हुई है वो जगह पर जो भी कोई पहुंचेगा प्रणाम करेगा उसका सारा पाप नष्ट होना चाहिए और वो गदा लोह दंड तीर्थ नाम से प्रसिद्ध होना चाहिए। तो भगवान ने कहा अस्त, तो वो जगह पर पुंडलिक का जन्म हुआ दिंडिरव वन में, और उसी जगह पर रुक्मिणी भगवान से नाराज होकर द्वारका से आई तपस्या करने के लिए। बहुत सारी कथा है ना, यहां से ऐसी ऐसी घुसी हुई है, नाराज क्यों हुई रुक्मिणी, क्योंकि द्वारका के अंदर भगवान जब वृंदावन छोड़ के गए ना, सभी गोपियों को राधा रानी को सब छोड़ के चले गए, मथुरा गए पहले, वहां पर जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया, बड़े परेशान हो गए, बार बार युद्ध करना, बार बार अटैक होता है, लोग भी परेशान हो गए कि आपको शांति तो है नहीं, तुम इधर आ गए वृंदावन से तो तुम्हारे पीछे राक्षस भी आ रहे हैं बार बार, इधर हमारा शांति का जीवन भंग हो गया, बार बार 16 बार आक्रमण किया उसने, चलो युद्ध तुम कर रहे हो लेकिन तकलीफ तो हम हो रही ना, समझा भैया भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया, आप हम तो युद्ध नहीं करते लेकिन आकाश में आवाज आएगा, लाइट ऑफ हो जाएगा, सायरन बजेगा, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो जाएगी, सब लोग छुप के जाएंगे, बैठेंगे मुंह पे कपड़ा रखेंगे, बॉम्ब गिरेगा तो आवाज आएगा तो दांत फट जाएगा हमारा, इसलिए फिर सब्जी के भाव बढ़ेंगे, کہ پانی نہیں ملے گا, پانی خراب ہو جائے گا, جب بام گرے گا تو بام کے سب ٹکڑے میدان پہ گریں گے, زمین پہ گریں گے, گچی پر گریں گے, بلڈنگ کے نیچے گریں گے, ہم لوگ جل سکتے ہیں اس سے. کتنا تکلیف ہے ہم کو, ہم لوگ یدھ نہیں کر رہے ہیں, یدھ سینک لوگ کر رہے ہیں, لیکن کشٹ آپ کو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے, شانتی بھنگ ہوتی کہ نہیں, اسکول بند ہو جائیں گے, پڑھائی نہیں ہوگی, ایگزام کینسل ہو جائے گا, بچے کا سال بگڑ جائے گا, یدھ چل رہا ہے, یدھ کے بعد بہت مہنگائی بڑھے گی, پانی خراب ہو جائے گا. تو ویسے ہی جب متھرا میں 16 بار یدھ ہوا جراسندھ کے دوارا آکرمن ہو کر, تو جنتا نے بھگوان کو بولا بس ہو گیا, ابھی ادھر سے ہم کو شفٹ کرو, ہم لوگ کہیں اور جا کے رہیں گے. تو وہ جا کے دوارکا میں بھگوان نے سمندر کے اندر سے سمندر کو پیچھے ڈھکیل کر وہ زمین جو پیدا کیا وہاں پر اپنا وشوکرما کو بلا کر بڑا دوارکا نگری بسایا, اتنا سندر. ہاں, اس میں 16,108 بنگلے تھے, خالی ایک آدمی کے تھے, اس کے کرشن بھگوان, باقی سینکوں کے باقی سب کے بنگلے الگ الگ تھے, یہ خالی بھگوان کی, کیونکہ ایک پتنی کو ایک بنگلہ, ایسے انہوں نے 16,108 بنگلے بنوائے, محل بنوائے. بنگلے تو مطلب آج کل کے ادھر کے گڑاولا کے پونا کے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, یہ کیسے بنگلے بنائے انہوں نے, ہیرے کے کھمبے بنائے اس کے اندر, اس کا ہی لائٹ آتا تھا روم کے اندر, روم کے اندر پرکاش, وہ کھمبے کے اندر جو رتن لگے ہوئے اس کے پرکاش آتا, اور رکمنی کے لیے ایک, ستیہ ماما کے لیے ایک, متر بندہ کے لیے, لکشمنا کے لیے ایک, ایسے بہت سندر محل بنوائے, اور ایک ایک پتنی کے ساتھ میں الگ الگ روپ میں وہ نواس کرتے تھے. مطلب جب نکلتے نا آفس جانے کے لیے صبح دربار میں جانے کے لیے, تو ایک کرشن بیٹھتے تھے دوارکا دھیش کے روپ میں, جب گھر پہنچتے تھے تو 16,108 روپ میں وستارت ہو کر ایک ایک روپ ایک ایک محل میں گھستا تھا. تو ہر ایک محل میں کرشن ہے, 16,108 رانی کے گھر میں ایک ایک کے گھر میں ایک کرشن بیٹھے ہوئے, کہیں کھانا کھا رہے, کہیں کھیل رہے ہیں, کہیں بچے کو کھلا رہے ہیں, کبھی اکیلے میں پتی کے ساتھ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, کبھی سو رہے ہیں, کبھی جھولا جھول رہے ہیں, ایسے الگ الگ کام کر رہے ہیں, اور نارد منی دیکھ رہے ہیں, دیکھتے ہیں ان کا گرہستھ چل رہا ہے کیسے. ہاں سوچ, ہمارے گھر میں ایک پتنی ہوتی ہے کتنا مشکل ہوتا ہے, ہمارے میں آپ کو ایک پتنی کو سنبھالنا کتنا مشکل ہے دنیا میں, ایک پتنی کی مانگیں پوری کرتے کرتے ہمارے ناک میں دم ہو جاتا ہے, لون لینا پڑتا ہے لون. تو نارد میں سوچتے ہیں کہ انہوں نے 16,108 بیویوں کو بنایا ہے شادی کر کے, تو پتہ نہیں کیسے چلتا ہوگا, ہاں سب ٹھیک ٹھاک چلتا ہوگا کیا. تو دیکھنے کے لیے نارد ہونے آئے تھے, اور کیا دیکھ رہے ہیں, ادھر جھولا جھول رہے ہیں, ادھر کھانا کھا رہے ہیں, ادھر بچے کے ساتھ کھیل رہے ہیں, ادھر آرام کر رہے ہیں, ادھر آنند آنند چل رہا ہے, کہیں جھگڑا نہیں, کہیں کوئی تکلیف نہیں, بیوی نہیں رو رہی ہے, تو میرے پاس آئے نہیں, ادھر ہی لا کے بیٹھے تھے, میرے پاس آئے نہیں ملنے کے لیے, میں کئی دن سے بیٹھی تھی تڑپ رہی تمہارے لیے, نہیں سب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی کمپلینٹ نہیں ہے, کوئی نہیں بول رہی کہ تم میرے ساتھ کیوں نہیں آئے, سب کو اکول ٹائم دے رہے ہو, اور کسی کو لگتا رہا لگ دے رہا ہے ایسا کہ میرا سمے نکال کے وہ بیوی کو دیا, ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے, کیونکہ وہ بھگوان ہے. ہمارے پاس ایک کے مطلب دو بیوی ہوگی نا, تو دو تو جھگڑا کرتے رہیں گی اپنے آپ میں, اور دونوں مل کے آپ سے بھی جھگڑا کریں گے. تو ایسے دوارکا میں بھگوان 16,108 پتنی کے ساتھ میں رہنے کے بعد بھی بھگوان کو برج کی یاد آتی تھی, یاد کرتے تھے میرے میاں, میرے بابا, مکھن, گائے, گوپیاں, میرے گوال بال, سب کو یاد کرتے تھے. جب رکمنی ان کو کھانا کھلاتے تھے نا, تو رکمنی تو بھاگیہ لکشمی ہے, بھاگیہ لکشمیوں کی پرمکھ ہے, وہ اپنے ہاتھ سے 56 بھوگ بناتی تھی بھگوان کے لیے, اور پنکھا لگاتے لگاتے کھلاتی تھی پریم سے ان کو, کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے بیٹھ کے کھلاتی تھی, پھر بھی وہ اتنا سوادشت ونجن 56 بھوگ کھلانے کے بعد بھی بھگوان ترنت کبھی کبھی آدھا ہی چھوڑ کے اٹھتے تھے, اور روتے تھے رات کھڑے ہوتے, بولے کیا ہو گیا, نہیں میرے بھیا کی یاد کر, بولے کیوں, میرے کھانے میں کچھ کمی تھی کیا, کچھ کڑوا لگا, کچھ مو زیادہ لگا, کچھ پھیکا لگا, اور پھر ممی کی یاد آئی کہ ممی کا کھانا کتنا اچھا بنتا تھا, جب میری ممی آلو کی سبزی بناتی تھی تو کتنا اچھا بناتی تھی, آج تم نے بنایا کیا بنایا رکھ دیں, ایسا بھی نہیں ہے آپ نے پرفیکٹ بنایا ہے, لیکن پھر بھی یاد آ رہی ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ایسا ہے رکمنی دیوی, تم نے جو کھانا بنایا اس میں کوئی پرابلم نہیں, بہت سوادشت ہے, بہت پریم سے بنایا ہے, تم خود بیٹھ کے ملا بھی رہی ہو, کوئی کمی نہیں اس کے اندر, لیکن मेरी माँ जो मुझे बना के खिला चुकी प्रेम से, उसका कंपैरिजन नहीं कर सकता हूं। वो कभी कभी कोई कहना कड़क बुद्धि का लड्डू होता है कभी, तो बच्चे को वो तोड़ने को आता नहीं ना, तो माँ क्या करती है उसको तोड़ती है, खुद थोड़ा चबाती है, गर्म करके निकाल के बच्चे को खिलाती है प्रेम की वजह से। अरे मेरी मम्मी यशोदा देवी जब भी सख्त खाना अपने मुंह में डाल के चबा कर नरम करके मेरे मुंह में डालती थी ना, उसका स्वाद ना तुम्हारे शब्दों को नहीं, क्या करो सच्चाई है। रात को सुते थे तो ये उठ के खड़े बिस्तर पे, ललिता विशाखा राधा रानी कहाँ हो तुम? तो रुक्मिणी जी सोच रही है, सत्य मामा सोच रही है कि हमारे प्रेम में कुछ कमी है क्या, क्या उन औरतों की नाम लेके याद करते हो? बोला ऐसा ही है, क्या करो। तो ब्रज की हमारी जो सखियां थी इतना प्रेम करती थी हमसे, उनको याद आती होगी। तो एक दिन मथुरा से वृंदावन से राधा रानी भगवान को मिलने आई, रुक्मिणी के महल में आई। तब रुक्मिणी कहीं गई हुई थी, तो भगवान के साथ में राधा रानी बैठ गई और उनका वार्तालाप शुरू हुआ। बड़ा आनंद आया, बहुत दिन के बाद राधा रानी आई, बहुत प्रेम से उनको मिले। जब मिल रहे थे तो उतने में रुक्मिणी घर पे आई और देखा कि राधा रानी के साथ में मेरे ही महल में कृष्ण भगवान बैठे हैं, तो उनको गुस्सा आया और क्रोध होकर वो चली गई सीधा। और कहां पर आई वो बताओ, कहां पर आई? हाँ, डिंडीरा वन, जहां पर पंडरपुर है ना, वहां पर आई हो, वहां पर तपस्या करने बैठ गए, क्योंकि वहां पर राक्षस डिंडीराव ने वरदान मांगा था कि यहां पर जो भी आएगा वो पाप से मुक्त हो जाएगा। तो वहां पर बैठकर रुक्मिणी ने बहुत तपस्या किया, बहुत जबरदस्त तपस्या की, तो बड़ा पवित्र स्थान है। तो भगवान को भी खराब लगा रखे बेचारे, रुक्मिणी गुस्सा हो गई, चली गई। और कुंडली यहां पर था, मैं देखो वहां पर तपस्या कर रही है रुक्मिणी, हाँ एक सीन वहां पर है, एक सीन यहां पर क्या है कि पुंडलिक जो है वो जन्म हुआ उसका, तब से वो बहुत नालायक निकला बचपन में, अपने माता पिता का अपमान करना, माता पिता की आज्ञा पालन नहीं करना, उसके खिलाफ ही काम करना, उनको दुख देना, बुरा बुरा व्यवहार करना। तो माता पिता जो थे उनके मुक्ता भाई और जामुदेव बड़े परेशान हुए, चलो बच्चा था तो बच्चा था तो आगे जाके सुधरेगा बड़ा होने के बाद, इसलिए सहन कर लिया उसने। ये बड़ा हो गया तो शादी भी कर दिया उन्होंने, फिर भी नहीं सुधरा हो, इतना पापी बन गया हो, उसको बोलते हैं पातकी, यानी कि बहुत पाप करने वाला। माता पिता को बहुत दुख हो गया कि अभी तो क्या सुधरेगा, ये पत्नी होने के बाद भी सुधर नहीं रहा है। तो परेशान हो गया, दुखी होकर बड़े कष्ट प्राप्त करके वो चले गए अपने घर छोड़ के, बोले काशी जाएंगे और वहां पर यात्रा करेंगे, बस उसको छोड़ देंगे। तो पैदल पैदल काशी जाने निकले वो, किसी से पूछा भी नहीं क्या कुछ चाहिए आपको, कुछ रुपया पैसा, कुछ घोड़ा गाड़ी कुछ चाहिए, देखा भी नहीं जाओ, तो निकल गए रास्ते चल रहे पैदल। कुछ देर बाद में इनके फ्रेंड आते हैं, वो इसके कुंडली के, और कहते हैं कुंडली हम लोग ग्रुप मिलकर जा रहे हैं काशी को, आता है क्या तुम? उसको भी अट्रैक्शन हो गया, चलो हम चलते हैं। तो घोड़ा गाड़ी करके चला वो काशी जाने के लिए, और माँ बाप पैदल चल रहे हैं और घोड़ा गाड़ी जा रहा है। तो कुछ ही देर में माता पिता को मिलता है रास्ते पर, वो केवल मुड़कर देखता है उनको और आगे चलते रहते हैं, उनको गाड़ी पर लेता भी नहीं, कितना उसका दुर्लक्ष करता है। माता पिता को बड़ा कष्ट होता है। फिर आगे पहुंचता है तो एक आश्रम है वहां पर, कुकुट महाराज का आश्रम, बड़े महायोगी थे वो, उनका एक बड़ा आश्रम था वहां पर, ये रुक गए सब। तो वहां पर कुकुट महाराज जी आ गए, इसको कुंडली ने पूछा क्या महाराज जी आप कभी काशी गए हो क्या? महाराज बोलते मैं कभी काशी नहीं गया, इतना ना बोल के महाराज जी तुरंत चले गए मारने के उससे। रात को सो गया कुंडली, तो रात में सुनो बराबर से, रात में तीन बहुत जवान औरतें आश्रम में आई, वो बहुत निस्तेज और बहुत कुरूप थी, काले रंग की थी, बहुत कुरूप दिख रही थी। अचानक आई रात में, जैसे कि उनको पता है सब कुछ क्या है, नहीं 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 जानकार औरत थी, ऐसे भाव था उनका। झाड़ू हाथ में लिया, इन्होंने पूरा आश्रम झाड़ू भर के साफ कर दिया, सब जगह गोबर का लेप लगाया, सुगंधित द्रव्य लगाया, फूल डाले सब जगह पे। और जैसे ही उन्होंने झाड़ू लगाया सबको साफ किया, वो एकदम तेज वाली बन गई, पहले निस्तेज थी एकदम तेज वाली, तेज उनका जागृत हो गया, एकदम सुंदर बन गई वो, प्रकाश निकलने लगा उनके शरीर से, और बहुत सुंदर बन गई वो। और ये चमत्कार पंडित ने अपने आंखों से देखा, क्या जब आई थी तब पूर्व काली ऐसे रंग की थी, झाड़ू लगाया तो एकदम चमक गई। तो उन्होंने पूछा, हे देवी तुम कौन हो? तो उसका जवाब क्या देते हो, बोलते तुम बड़े पातकी हो, तुम बड़े पापी हो, तुमने बड़े माता पिता का अपराध किया है, तुम साधुओं का अपराध किया है, तुम बड़े गए गुजरे हो। प्रश्न का क्या था कि तुम कौन हो? उसके उत्तर में क्या बोली वो कुंडलिंग को कि तुम बड़े पातकी हो, तुम बड़े पापी हो, साधु निंदक हो, माता पिता का अपराध करने वाले हो। तो एकदम बुरा लगा उसको, बहुत दुख हुआ उसको, पश्चाताप हो गया उसको। कुंडलिंग ने कहा मुझे माफ कर दो, मैं समझ गया अभी आपके बोलने की वजह से, आपका तेज देखा मैंने, आपके वचन से मुझे इतना हृदय को परिणाम हो गया है कि मैंने वाकई मेरे माता पिता का बहुत अपमान किया है, अब मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए। बोलते अच्छे बर्ताव करने वाले बनो, सद्गुणी बनो, माता पिता की अच्छी सेवा करो, भगवान की पूजा करो, भगवान के भक्त बनो। और आगे बताती है कि हम तीनों गंगा जमुना और सरस्वती हैं, आप बड़े भाग्यवान हो कि आप भले भले भटके भूले भटके क्यों ना हो, इस कुकुट महाराज महायोगी भक्त के आश्रम में आए हो, और हम भी यहां पर आते हैं। ये योगी महान इतने हैं कि हम हमारे पानी के अंदर बहुत सारे लोग स्नान करते हैं, अच्छे बुरे सब लोग, पापी लोग स्नान करते हैं, अपना पाप और बुरा कर्म जो है हमारे पानी में छोड़ते हैं, उसकी वजह से हमारा सुंदर रूप जो है वो कुरूप बन जाता है। फिर हम लोग इनके आश्रम में आते हैं, झाड़ू लगाते हैं तो हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, और सारे पाप नष्ट होते ही निस्तेज स्वरूप नष्ट होकर बहुत तेज वाला स्वरूप वापस प्राप्त होता है, हमारा पाप नष्ट होता है पूरा और हम लोग शुद्ध हो जाते हैं। ऐसे आश्रम में तुम आए हो, धन्य आत्म धन्य हो तुम। उतने में अगले दिन उनके माता पिता चलकर पैदल वहां पहुंच जाते हैं। तब तक कुंडलिंग जो है उसको पश्चाताप होकर उसका भाव बदल गया है, भगवान का भक्त बन गया हुआ, माता पिता के चरण पांव पकड़ता है, वंदन करता है, माता पिता मुझे माफी करो, अब मैं आपकी सेवा करूंगा, भगवान की सेवा करूंगा, आपकी सेवा करूंगा, ऐसे बोलकर माता पिता को घोड़ा गाड़ी में बिठाकर वापस घर लेके जाता है। और अभी काशी वाशी कुछ नहीं, भगवान की सेवा करेंगे, वही काशी वही रामेश्वर वही भगवान का धाम। दोबारा उनको लेकर जिंडीर वन में लेके आते हैं, मतलब पंडरपुर के आज के, तो माता पिता की सेवा करता है भगवान, इतनी अच्छी सेवा करता है कि शुद्ध भक्त बनता है, महात्मा बनता है। तो वो कौन है? पिछले जन्म का मुचकुंदरा भगवान का जन्म सेवन था, वो कुंडली बना हुआ है। भगवान ने वादा किया है कि उन्होंने कहा था कि मेरे सामने दर्शन देने के लिए जैसे आए हो वैसे ही खड़े रहो, भगवान को उसकी याद थी। बहाना क्या था कि रुक्मिणी नाराज होकर चली गई, तो रुक्मिणी को बनाने के लिए द्वारका से निकले और उधर आए दंडीरव वन में, रुक्मिणी को मिले भी, वहां पर रुक्मिणी को बहुत समझाने का प्रयास किया, बहुत सांत्वना दिया, बहुत समझाया, लेकिन रुक्मिणी ने नहीं माना, तो वही गुस्सा रही वैसे ही, और अपनी तपस्या करती रही। इसलिए आज भी पंडरपुर में रुक्मिणी का जो विग्रह है भगवान के हाथ में नहीं है, दूर है, वही भाव में खड़ी है, वही क्रोध में खड़ी है। तो जब रुक्मिणी नहीं मानी तो सीधे भगवान आए कुंडलिंग के घर में, तब रात का समय था, अंधेरा था, और कुंडलिंग अपनी माता पिता के चरण दबाने में व्यस्त था। माता पिता की बड़ी अच्छी सेवा करता था, उनके लिए खाना बनाता था, उनको खाना खिलाता था, उनको वस्त्र पहनाता था, उनको अच्छे अच्छे मीठे मीठे बातें उनसे करता था, सदव्यवहार उनका सम्मान करता था, हर प्रकार से माता पिता की सेवा करता था। रात का समय था, वो पांव को मालिश करके उनको सुधार रहा था। उतने में दरवाजे से भगवान विष्णु प्रवेश करते घर में, जैसे प्रवेश करते हैं पूरा घर जो अंधेरा वाला है लाइट लगा कर रखा है, दीपक लगा कर रखा है, पूरा प्रकाश से भर जाता है। तो अचानक अंधेरे के समय पर इतना प्रकाश आया तो कुंडलिंग थोड़ा डर जाता है, आश्चर्य होता है, देखता है मुड़के तो क्या है, भगवान खड़े हंस रहे हैं बड़े प्रेम से, घुघराले बाल उनके चेहरे से उतरकर कंधे पर आए हुए हैं, हाँ लंबी लंबी कमल जैसे उनकी आंखें, कान में कुंडल डुल रहे हैं, दिल डुल रहे हैं, पीतांबर पहना है कमर पर, गले में कौस्तुभ मणि है, वैजयंती माला पहन रखी है, हाथ में बाजू बंद है, कलाई बंद है, अंगूठी पहन कर रखी है, सब जगह पर बहुत सुंदर दृश्य भगवान का। भगवान हंस रहे बड़े प्रेम से, बड़े माँ माता की तरह वात्सल्य भाव में उनको देखकर हंस रहे। तो कुंडली बोलता है मैं अभी माता पिता की सेवा में व्यस्त हूं, मैं आपको बाद में मिलूंगा, ऐसे करके एक ईंट फेंकता है। बोले इस पे खड़े रहो, मैं अभी माता पिता की सेवा करूँ। खुद भक्त था भगवान का, माता पिता भी भगवान के भक्त थे, वैष्णव थे माता पिता, तो उनकी सेवा में मग्न है। इसलिए भगवान प्रसन्न हो गए और रुकने को तैयार हो गए, वही रुके हुए। बहुत देर बाद भगवान को खड़ा कर दिया उन्होंने, माता पिता की सेवा किया, माता पिता सो गए, फिर पुंडलिक कर्ण हो गए और भगवान को दंडवत प्रणाम किया। तो भगवान ने कहा है पुंडलिक, तुम्हारे भगवत भक्ति मतलब मेरी भक्ति से मैं बड़ा प्रसन्न हूं, तुम्हारे माता पिता जो वैष्णव है उनकी सेवा से मैं बड़ा प्रसन्न हूं, बोलो तुम क्या चाहते हो। तो उसने क्या उत्तर दिया आप सब लोग ध्यान से सुनो। अगर हमको भगवान ने बोला जो चाहे मांग लो, तो क्या क्या मांगेंगे आप बताओ? आप बोलेंगे घर नहीं है, अभी लॉटरी लगा हुआ है तो लोन लेना है, भगवान तुरंत धन का इंतजाम कर दो तो लोन लेना नहीं पड़ेगा मुझे, और थोड़ा सा दूर है हॉस्पिटल से, थोड़ा सा एक टू व्हीलर भी दे दो, और ज्यादा अच्छा लगे तो फोर व्हीलर दे दो चलेगा, एक आध दो बच्चे भी होने दो, अच्छा अच्छा पढ़ाई कर ले दो उनको, हाँ, और बहुत साल तक हमको बुढ़ा नहीं होना चाहिए, जवानी बने रहेंगे तो अच्छा है, सुंदर हमको बाल दो, सुंदर आंखें दो, सुंदर रूप दे दो, क्या क्या मांगेंगे हम लोग, है ना, अच्छा अच्छा खाना दो घर पे, वर्ल्ड का बेस्ट खाना हमको मिलना चाहिए, ऐसा लंबा लिस्ट आप पता नहीं आपके मन में क्या क्या रहेगा, मेरे को मालूम नहीं। कामो सर्व कामो वहां मोक्ष कामो वहां उदार दी, अनंत भौतिक इच्छा लेकर भी हम जाएंगे तो भी हमारी इच्छा पूरी नहीं होगी। उसने क्या जवाब दिया बहुत सुनने जाए दवा हमें। पुंडलिक ने बोला कि साक्षात आप मेरे सामने खड़े हो, तो आपसे मैं क्या मांगू, मैं आपको ही मांग लेता हूं, क्योंकि आपसे मैं जो कुछ मांग लूंगा वो या तो धन होगा, या तो वस्त्र होगा, या तो प्रॉपर्टी होगी, या तो सोना होगा, या तो हीरो होगा, ऐसा कुछ होगा ना, लेकिन जो भी आपसे मांगूंगा आप मुझे दोगे वो मुझे जीवन के अंत में यही छोड़कर जाना होगा, तो ऐसे मैं वस्तु मांगूंगी आपसे। साक्षात देने वाले आप मेरे सामने खड़े हो, कल्प वृक्ष की तरह हो, कल्प वृक्ष का मतलब क्या होता है, उसको कुछ भी मांगो तो आप दे सकते हो, साक्षात कल्प वृक्ष की तरह आप मेरे सामने खड़े हो तो मैं आपको ही मांग लेता हूं, नंबर वन। नंबर टू कहता है कि आप इतने भक्त वत्सल हो कि मेरे लिए आप द्वारका छोड़कर यहां तक आए और मेरे घर पे आके दर्शन दे रहे हो, मैं भी आपके पास मंदिर में तो नहीं आया मिलने के लिए, आपको मतलब लाइन में लगाया, कुछ भी नहीं किया मैंने आपके लिए, आप मेरे लिए इतना प्रेम से, माता पिता के लिए भी अधिक प्रेम से मेरे को मिलने को आए घर में, मतलब आप भक्त वत्सल हो, भक्तों पर प्रेम करने वाले हो माता पिता की तरह, और जैसे भक्त वत्सलता से इतना द्वारका धाम छोड़ के इतनी दूर तक मुझे मिलने आए हो, जितना प्रेम से मिलने को आए हो और इतना सुंदर दर्शन आपका दे रहे हो, इतने प्रेम से मुझे आप देख रहे हो, तो वैसे ही आप यहां पर सभी भक्तों को खड़े होकर दर्शन दो, अब जाओ मत यहां से, आप जैसा मुझे दर्शन दे रहे हो वैसे ही सभी भक्तों को दर्शन दे रहे हो। और बोलते हैं कि आपका दर्शन जो भी करेगा वो सब पाप से मुक्त होना चाहिए, जितना भी महान महान पाप करेगा वो सब यहां आकर केवल आपको देखने से नष्ट होना चाहिए। और आगे बोलते हैं कि चाहे वो आदमी पापी हो, पतित हो, आपके सामने आने के लायक भी नहीं हो, फिर भी उनको आकर यहां पर आपका दर्शन मिलना चाहिए, ऐसा वरदान मानते हो, समझो। बोलते थे कि अच्छा हुआ मेरे को दर्शन दिला, मेरा काम तो हो गया ना, नहीं, अरे कुंडली का आपको सब लोग को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि वो 500 साल पहले की बात है, नहीं 5000 साल पहले की बात है, द्वापर युग के अंत की बात है, द्वापर युग के अंत की बात है वो, और उस समय उसने भक्ति किया, माता पिता की सेवा किया, भगवान का भक्ति किया, अपने जीवन का उद्धार किया, भगवान का दर्शन प्राप्त किया, उसने हो गया काम उसका, लेकिन उसने क्या सोचा, मैं अकेले क्यों भाग्य ले लूं, सभी सब लोगों को ये भाग्य मिलना चाहिए, जो लोग भगवान के भक्त हैं उनको मिलना चाहिए, नई भक्त है उनको भी मिलना चाहिए, इसलिए जो दर्शन उनको प्राप्त हुआ वही दर्शन सब जनता को प्राप्त होना चाहिए, वरदान उसने भगवान से मांगा, इसलिए कमर पर हाथ रखकर भगवान खड़े थे ना वेट करते हुए, उसी रूप में खड़े रहे हो। वो पुंडलिक का शरीर समाप्त हो गया, पुंडलिक भगवत धाम में चला गया, लेकिन भगवान अभी भी वही खड़े हैं। अपने भक्त को दिए हुए वरदान को याद करते हुए भगवान वही खड़े हैं। आपको पता है जितने भगवान के अवतार हो गए ना, वो गौलोक धाम से हुए। वहां से आते हैं हिरण्यकश्यप को मारने के लिए, वो वराह बनकर आए। हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह भगवान बनकर आए। हाँ, रावण को मारने राम बनकर आए, आए ना। लेकिन काम खत्म करते, लीला समाप्त करके, बहुत साल रहने के बाद में, लीला करने के बाद में वापस चले गए गौलोक धाम में। लेकिन पंडरपुर के भगवान जो हैं, विट्ठल भगवान, वो क्यों, कैसे भगवान है वो आए खाली, वापस नहीं गए, वो उधर अभी भी उधर ही। जब तक सृष्टि रहेगी, जब तक जीवन रहेगा, जब तक लोग रहेंगे, तब तक भगवान वही खड़े रहेंगे। एक भक्त ने कहा था 5000 साल पहले द्वापर युग में, कि आप जनता को दर्शन देने के लिए यही खड़े रहो, इसलिए वो आज भी खड़े हैं। पता है ऐसे क्यों खड़े हैं? कमर पर हाथ रखे तो बोल रहे हैं कि भव सागर जो है ना, जन्म मृत्यु का सागर जो है, लाइफ एंड डेथ का सागर जो है, वो बहुत गहरा है, उसमें सब लोग डूब रहे हैं, लेकिन जब मेरे को देखने को आओगे ना, तो वो इतना बड़ा गहरा सागर जो है, वो इतना तक पानी का हो जाएगा, और कमर तक के पानी में कोई डूबता नहीं है, आराम से पार कर सकते हो। मेरी कृपा से, मेरे दर्शन की कृपा से, इतना बड़ा गहरा भव सागर जो है, वो कमर तक की गहराई का बनेगा, और आप सब लोग मेरे सामने खड़े हो, तो मुझे केवल देखने मात्र से उस भव सागर से आराम से पार कर सकते। डोंट वरी, बी हैप्पी, बोला ना मैंने आपको, ये भगवान का वरदान है जो उन्होंने पुंडलिक को दिया, और पुंडलिक के कारण सब दुनिया को दिया, और वो पुंडलिक के वजह से पुंडलिकपुर पंडरपुर ऐसा बन गया। अपने भक्त के ऊपर उन्होंने उस जगह का नाम दिया। तो मैंने क्या बताया, पहले वो दिंडीरव वन था, जो दिंडीरव राक्षस को मारने के बाद उसका नाम दिंडीरव वन पड़ा, और दिंडीरव वन में पुंडलिक ने भगवान को पसंद किया, इसलिए भगवान ने उस जगह को पुंडलिकपुर नाम दिया, जो आगे जाकर पंडरपुर बना। तो भगवान के भक्त के ऊपर बना हुआ नाम है। तो पहला नाम था दिंडीरव वन, उसके बाद बना पंडरपुर। और इतना ईंट जो उसने फेंकी थी, उसकी भी एक कहानी है, सुनना है क्या आपको? हाँ, कितने लोगों को सुनना है बताओ? हरी बोल। वो ईंट की कहानी ऐसी है कि एक राक्षस था, गोपीकांत प्रभु आपको पता है कहानी थी। भगवान को कहा गया है विठोबा, मतलब क्या, जो वीट ना वीट, वो वीट उसने फेंकी, जो फेंक दिया था उसके ऊपर खड़े हो गए, इसके नाम पड़ा उनका विठोबा। इसलिए उसकी वीट की कहानी ऐसी है कि इंद्र के सामने एक ऋषि ने तपस्या शुरू किया, उसके 3 सर थे उस ऋषि के, और उसने बहुत तपस्या किया। इंद्र को डर लग गया कि इसका तपस्या बहुत आगे बढ़ गया ना, तो मेरा पोस्ट जो है वो ले लेगा, जैसे कोई होता ना ऑफिस में कोई जूनियर आदमी बहुत अच्छा काम करने लगा तो वो डर लगता है सीनियर को, बहुत अच्छा काम किया तो मेरे पोस्ट पे आ जाएगा, मेरे को छुट्टी कर देगी, इसलिए उसके पांव में टांग अड़ाने की कोशिश करेगा। भक्तिदान में ऐसा नहीं होता है। भक्तिदान में अगर आप जूनियर हो, अच्छा काम करोगे, तो आपका सीनियर भी रहेगा, आप भी सीनियर बन जाओगे अपने आप। हमारे कितने हॉस्पिटल में हाउसकीपिंग के लोग थे, अभी सुपरवाइजर बन गए हैं कि नहीं? पहले हमारे राजन संघ के भी सुपरवाइजर हाउसकीपिंग में थे, अच्छा काम किया तो सुपरवाइजर बन गया। फिर अनिल राव भी हाउसकीपिंग में थे, वो भी सुपरवाइजर बन गए। इंद्रनाथ भी थे पहले हाउसकीपिंग में, सुपरवाइजर बन गए। अच्छा काम करने से कोई किसी का नुकसान नहीं होता है, लाभ ही लाभ होता है। लेकिन इंद्र को डर लग गया कि इसकी तपस्या बहुत आगे बढ़ गई ना, तो इंद्र का पद जो है वो मेरा जाएगा, इसको मिलेगा। तो उसने किसी को भेज दिया उसका तपस्या भंग करने के लिए, और एक अस्त्र से उसका सर काट दिया। बिना मतलब के तपस्या कर रहा है बेचारा आदमी, बैठ के अपना भजन कर रहा है, दूसरे को कष्ट हो रहा है, तो उसने आगे किसी को भेजा, उसको मार डाला। तो मरते समय उस ऋषि ने इंद्र को शाप दिया कि तुमने तपस्या करते हुए, भजन करते हुए मुझे मारा है, तो तुम जो है पाषाण बनोगे, पत्थर बन जाओगे, ईंट बनोगे, मतलब निश्चेष्ट बन जाओगे, कोई संवेदना नहीं होगी तुमको। पत्थर को कुछ होता है क्या? तो संवेदना नहीं होती, तो इंद्र को कीट बनकर रहना पड़ा। तो इंद्र ने बहुत जोरदार रोना आरंभ किया, भगवान विष्णु के पास गया, भगवान मुझे मैंने ऐसा ऐसा किया तो वो ऋषि ने मुझे मरते हुए शाप दिया कि तुम कीट बन जाओगे, कीट बन जाओगे। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें उसको तार दूंगा उसको। तो वो ईट थी वो जो पुंडलिंग ने फेंकी थी, जिस पर भगवान का चरण लगते ही इंद्र का उद्धार हो गया, है ना, अच्छी कहानी। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, इंद्र की तरह किसी अच्छे भजन करने वाले व्यक्ति को मारना चाहिए, फिर मारने के बाद में अगर अक्कल आ गई तो अरे गड़बड़ कर दिया मैंने, भगवान बचा लो, भगवान हर टाइम बचाएंगे ऐसा गारंटी नहीं। हमको कर्म अच्छे करने चाहिए, सबसे पहले भजन करना चाहिए। इस तरह से पुंडलिकपुर यानी पंडरपुर जो क्षेत्र है वो इतना महान है कि वहां पर जाने के बाद में केवल विट्ठल भगवान का दर्शन करते ही जो बड़े बड़े पातक और पाप आप लोग करते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। ऐसे कहा गया है कि मुख से हम लोग कुछ बुरा भला बोलते हैं, मुख से बोल के किसी को कष्ट देते हैं, पत्नी को बुरा बोलते हैं, पति को बुरा बोलते हैं, नेबर को बोलते हैं, पड़ोसी को बोलते हैं, और किसी काम करने वाले को बोलते हैं, क्योंकि जबान से जब बोलते हैं ना बहुत दुख होता है। अगर हमको आगे कोई मारेगा ना तो कोई कष्ट होगा आपको, लेकिन उतना कष्ट नहीं होगा अगर कोई बुरा भला बोलूंगा ना आपको। समझो एक पति ने अपने पति ने अपनी पत्नी को मार दिया, एक कान पे लगा दिया जोर से, ठीक है दुख हो गया, लेकिन हाथ नहीं लगाया, तो पत्नी को बोला कि तुम वेश्या की तरह हो, तो वो मारने के से भी हजार गुना दिल में दुखेगा उसको। कुछ नहीं हाथ लगाया उसने उसको, लेकिन खाली बोला मुंह से कि तुम वेश्या की तरह हो, तुम्हारा मति बहुत खराब है। तो बोले कि मुझे 4 लाख मारो लेकिन ऐसा मत बोलो, मुझे बहुत धीरे धीरे में कष्ट हो रहा है तुम्हारी बात सुन। ऐसे ही शादी हो गई, नहीं नहीं तो बहू घर पे आई और सासू ने कुछ बोला तो जिंदगी भर याद रहता है उसको कि मुझे इतना बोला उसने पहले दिन पे, तो मैं नई नई बहू बन गई तो मुझे ऐसा कष्ट दिया। हाँ बाद में आप अच्छे बनोगे, धनवान बनोगे, सब कुछ बनेगा, लेकिन सासू ने शादी के पहले दिन पे घर में एंट्री मारते वक्त जो बोला था ना वो नहीं भूल सकते आप, क्योंकि जबान से जो हम बोलते ना वो बहुत कष्ट होता है। हाँ हम लोग बोलेंगे हमने NICU में सिस्टर बिंदु मॉल के पास में फर्स्ट टाइम जॉब लिया, मेरा फर्स्ट डे था तो मुझे ऐसा ऐसा बोला उसने, 5 साल होने के बाद उसको याद आएगा कि मेरे फर्स्ट डे पे मेरे एम्प्लॉई का दिन था, पहला दिन तब मैं नीचे प्रेयर में अनाउंसमेंट हुआ था, ऊपर गई थी तो मेरे सिस्टर ने ऐसा ऐसा बोला था, कोई हाथ लगाया नहीं कुछ किया नहीं उसको, लेकिन बोला कुछ तो उतना याद रहेगा, दर्द होगा। तो ऐसे कहा है कि बोलने से जो पाप होते हैं ना, दूसरों को कष्ट होते हैं, वेदना होती है, पीड़ा होती है, कष्ट होते हैं, वो सारी पाप जो मुख से हम करते हैं वो मुख से भगवान का नाम जप करने से नष्ट हो जाते हैं। अभी समझ में आया, मैंने ये सब क्यों बताया, क्योंकि हम सब लोग अपने मुंह से अपने जबान से अपराध करते रहते हैं। लड़की पिता का करती है, पत्नी पति का करती है, पति पत्नी का करता है, पति बच्चों का करता है। हाँ अड़ोस पड़ोस में झगड़ा होता है तो क्या होता है, तुमने कुछ बोल दिया तो मैंने कुछ बोल दिया, फिर चालू हो गया। शुरू कहां से होती है, बात से शुरू होता है। कोई भी झगड़ा कहां से शुरू होता है, मारामारी कहां से होती है, बातों से होती है। बात से कुछ बुरा भला बोल दिया, क्या समझते हो अपने आप को, चालू हो गया फिर, तो बात से ज्यादा कष्ट होता है, बहुत दुख होता है। तो वो जो बातों का दुख है, कष्ट है, वो सारा पाप जो है मुख से भगवान का नाम जप करने से नष्ट हो जाता है। लेकिन व्यवहार के जो पाप होते हैं ना, हम लोग व्यवहार करते हैं गलत व्यवहार, जैसे पुंडलिक ने अपने माता पिता को गलत व्यवहार किया उनके साथ में, वो जो व्यवहार वाले पाप है वो सारे पाप भगवान पांडुरंग के दर्शन करने से नष्ट हो जाते हैं। इतनी शक्ति होती है, दुनिया भर में कहीं भी पाप करेंगे आप और पंडरपुर जाके भगवान का दर्शन करेंगे तो सब पाप नष्ट हो जाएंगे, लेकिन पंडरपुर में रहकर कुछ पाप करेंगे ना तो वज्रलेप की तरह होते, मतलब बहुत चिपकते हैं, निकलते नहीं, कपड़े में बहुत सारे दाग गिरते हैं, लेकिन कुछ दाग जो है हल्दी वाले निकलते नहीं, कुछ भी करो उसको आप, पीला रंग निकल के गुलाबी हो जाता है लेकिन निकलता नहीं, साबुन लगाया ना उसको पीला रंग को हल्दी वाले को तो गुलाबी बनता है, दाग बनता है लेकिन जाता नहीं हो ऑयल पेंट लग गया तो जाता नहीं, कुछ भी करो उसको, बोले लॉन्ड्री वाले सर ये इसका काम नहीं हमारे पास, अब नया नया कुछ लगा। तो कुछ दाग ऐसे होते हैं जो निकलते नहीं है कोई भी डिटर्जेंट से और पेट्रोल से निकलते नहीं है, बाकी मामूली दाग जो है वो निकल जाते हैं पानी और साबुन से, कुछ कुछ तो पानी से निकल जाते हैं बाकी साबुन से निकल जाते हैं, लेकिन कुछ दाग ऐसे होते हैं निकलते नहीं है। वैसे कुछ पाप ऐसे होते हैं जो कुछ भी करने से निकलते नहीं, ऐसे महाभयंकर पाप जो है वो पांडुरंग के सामने खड़े होने में नष्ट हो जाता है। अगर कोई हाथ उठाकर भगवान पंडरपुर के भगवान के सामने हाथ उठाकर उनके नाम का कीर्तन करेगा और नृत्य करेगा ना, डांस करेगा ना, तो वो किसी जन्म के अंत में उनकी प्राप्ति कर लेगा, ऐसा पंडरपुर का महात्म्य है, साधारण चीज नहीं है। पंडरपुर धाम जमीन पर नहीं है, एक ईंट जो है, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में आप, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, हाँ, इतना अंतर पंडरपुर जमीन से ऊपर है, जमीन पर नहीं है, जमीन का स्पर्श नहीं पंडरपुर धाम। एक योजन लंबा मतलब 8 मील लंबा और 4 मील चौड़ा है पंडरपुर धाम, लेकिन जमीन के ऊपर है क्योंकि वो वैकुंठ है, एक्सटेंशन ऑफ द्वारका, द्वारका का विस्तार है, द्वारका से वहां भगवान आए और वहां पर भू वैकुंठ, भू के ऊपर वैकुंठ को स्थापन किया उन्होंने, पंडरपुर स्मशान वैकुंठ धाम, वहां पर नदी में चंद्रभागा में स्नान करेंगे सब पाप नष्ट हो जाएंगे और भगवान के प्रति प्रेम निर्माण हो जाएगा। 3 रूप से भगवान वहां पर उपस्थित है, एक रूप है विठल का कमर पर हाथ खड़े रहकर खड़े होकर दर्शन दे रहे हैं, एक रूप उनका है चंद्रभागा नदी स्वयं, और एक तीसरा रूप है पंडरपुर क्षेत्र जो जमीन है उनकी, वो स्वयं विठल है, इस 3 रूप में वहां पर वो विराजमान है। तो बाहर से पाप करके आदमी वहां जाएगा तो केवल जाने से ही, केवल वहां पहुंचने से ही वहां की हवा खाना आरंभ कर दिया, सारे पाप उसमें नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए भक्त लोग वहां पर जाते हैं दर्शन करने के लिए। और आषाढ़ी कार्तिक की एकादशी के दिन क्या होता है विशेष, वहां पर साल भर वो ऐश्वर्य भाव में रहते हैं, लेकिन आषाढ़ी कार्तिक की एकादशी के दिन ब्रज भाव में चले जाते हैं, ब्रज की याद करते हैं, साल भर ऐसे खड़े हैं उस दिन ऐसे खड़े रहते हैं, बांसुरी लेकर बजाते हैं, ब्रज की याद करते हैं, गोपियों की याद करते हैं, गौचारण करते हैं, इसलिए लोग आषाढ़ी एकादशी के दिन और कार्तिकी एकादशी के दिन वहां जाकर दर्शन करते हैं, क्योंकि उस दिन वो गोपाल भाव में रहते हैं। बहुत बड़ा महात्म्य है उनका, अगले प्रवचन में टाइम मिलेगा तो बताएंगे। श्री पंडरपुर विठल भगवान की, श्री पुंडलिक महाराज की, चंद्रभागा नदी की, पिताई को प्रमानंदे, हरि हरि बोल, थैंक यू वेरी मच, हरि कृष्ण।